जरा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान के पास असीमित शक्ति है, मतलब वो एक ऐसा सम्राट है जो चाहे तो पूरी दुनिया को अपने आगे झुका सकता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि ठीक सातवें दिन एक विषैले सांप के डसने से उसकी मृत्यु होने वाली है।
और ऐसे में एक सामान्य शक्तिशाली इंसान क्या करेगा?
वही तो, वो शायद दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेगा, या किसी अभेद्य किले में छिप जाएगा, या पर उस सांप को मारने के लिए अपनी पूरी सेना भेज देगा। लेकिन वो सम्राट ऐसा कुछ नहीं करता।
बिल्कुल।
इसके बजाय वो अपना सारा साम्राज्य, अपना राजपाट त्याग कर चुपचाप एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता है।
और सच कहूं तो यहीं से मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। मतलब जब असीमित शक्ति वाला कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है ना, तो वो केवल हार नहीं मान रहा होता।
हाँ, वो कुछ और ही कर रहा है।
बिल्कुल, वो दरअसल एक गहरे सत्य को स्वीकार कर रहा होता है। यह उस क्षण की शुरुआत है जहां इंसान का सारा अहंकार, सारी सत्ता एक झटके में शून्य हो जाती है।
शून्य हो जाती है, सही कहा।
और वो अपने अस्तित्व के सबसे मूल प्रश्न से टकराता है।
और आज के इस डीप डाइव में हम इसी मनोवैज्ञानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज के हमारे श्रोत भागवत कथा के दूसरे दिन के प्रसंगों पर आधारित है।
हाँ, और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये कोई पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं का साधारण पाठ नहीं है। अगर हम इसके भीतर छिपे अर्थों को देखें तो ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है।
एक नक्शा है।
हाँ, एक ऐसा नक्शा जो कलयुग की मानसिक उथल पुथल और भटकाव से शुरू होता है और इंसान के सबसे बड़े डरों का सामना करते हुए सच्ची शांति और आत्मज्ञान तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है।
इस यात्रा की रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी है। भागवत का ये दूसरा दिन हमें बताता है कि कैसे हमारे मन का प्रदूषण शुरू होता है। और मैं बता दूं, ये कोई रातोंरात होने वाली घटना नहीं है।
हाँ, धीरे धीरे होता है।
बिल्कुल, ये उन चीजों से शुरू होता है जिन्हें हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। और फिर ये कथा हमें सिखाती है कि उस प्रदूषण से, उस माया से खुद को कैसे अलग किया जाए। और उसे जो स्थान मिलते हैं वो बहुत प्रतीकात्मक है।
हाँ, अब यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि उसे कौन से स्थान मिलते हैं। उसे 5 स्थान दिए जाते हैं: जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा और अंत में स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं।
बिल्कुल।
जुआ, मदिरा, व्यभिचार और हिंसा, ये चारों तो बहुत स्पष्ट हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला इंसान बता देगा कि ये पतन के रास्ते हैं। लेकिन सोना, मतलब स्वर्ण तो समृद्धि का प्रतीक है, मेहनत का फल है, उसे कलयुग का निवास क्यों कहा गया?
देखिए, इसे सिर्फ एक धातु के रूप में मत देखिए। स्वर्ण यहाँ केवल एक आभूषण नहीं है, ये सत्ता, असीमित संसाधनों और उस विशेषाधिकार का प्रतीक है जो इंसान को ये भ्रम दे देता है कि वो अब नियमों से ऊपर है।
अच्छा, मतलब एक तरह का अहंकार।
बिल्कुल। जुआ या मदिरा व्यक्ति का पतन करते हैं, लेकिन अपार धन और सत्ता का नशा इंसान के भीतर अहंकार और लोभ को इस तरह भर देता है कि उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो जाता है।
समझ गई।
जब किसी के पास असीमित शक्ति या धन आता है ना, तो अक्सर उसके भीतर की सहानुभूति खत्म होने लगती है। यही वो मानसिक अवस्था है जिसे कलयुग का प्रभाव कहा गया है।
ये तो आज के समय में भी बिल्कुल सच लगता है। ये ऐसा है जैसे किसी सामान्य इंसान को अचानक अपार संपत्ति मिल जाए, या आज की दुनिया के हिसाब से कोई बहुत बड़ी वायरल फेम मिल जाए।
हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है।
रातों रात इंसान का व्यवहार बदल जाता है। राजा परीक्षित के साथ भी तो बिल्कुल यही हुआ था ना। परीक्षित एक बहुत ही महान, स्थिर और धर्मपरायण राजा थे।
बहुत महान राजा थे।
लेकिन एक दिन वे शिकार पर जाने के लिए एक स्वर्ण मुकुट धारण करते हैं, और कथा बताती है कि इसी स्वर्ण मुकुट के जरिए कलयुग उनके मन पर हावी हो गया।
इस घटना की गहराई को देखिए। राजा परीक्षित शिकार करते हुए वन में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। वे प्यास और थकान से व्याकुल हैं। वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं जो उस समय गहरे ध्यान में बैठे थे। परीक्षित उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि कोई उत्तर नहीं देते। अब यहाँ उस स्वर्ण मुकुट यानी उस विशेषाधिकार और अहंकार का खेल शुरू होता है।
हाँ, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी कि कोई उन्हें अनसुना करे।
बिल्कुल, एक महान राजा जो हमेशा संतों का सम्मान करता था, उसका मन अचानक इतना विचलित हो जाता है कि वह अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता।
हाँ, उसे लगता है कि मैं एक राजा हूं और ये ऋषि मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ।
सही कहा। और इसी अंधी शान में आकर वो क्रोधवश एक मृत सांप उठाता है और उसे ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल देता है।
बाप रे, एक पल का क्रोध और अहंकार। राजा का काम प्रजा और संतों की रक्षा करना था, लेकिन एक छोटे से क्षण में केवल ये सोचकर कि मुझे सम्मान नहीं मिला, उसने अपना सारा विवेक खो दिया।
और यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। कलयुग बाहर से नहीं आता, ये कोई बाहरी राक्षस नहीं है जिससे तलवार से लड़ा जा सके।
हाँ, ये तो भीतर की लड़ाई है।
बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, एक विचार है जो नकारात्मक वृत्तियों जैसे लोभ, अहंकार और असुरक्षा के रूप में सीधे हमारे मन में प्रवेश करता है।
सही बात है।
परीक्षित की घटना ये चेतावनी है कि सत्ता और भौतिक साधनों का नशा पल भर में सबसे स्थिर और ज्ञानी मन को भी असंतुलित कर सकता है। मन का यह प्रदूषण ही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है।
और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब शामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चलता है कि उनके पिता का इस तरह अपमान हुआ है, तो वो क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं।
बहुत ही भयंकर श्राप था वो।
हाँ, श्राप ये था कि ठीक सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। मतलब एक पल का अंधापन और उसका परिणाम सात दिन में निश्चित मृत्यु।
इस सात दिन के प्रतीक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्राप जीवन की क्षण भंगुरता का सबसे बड़ा आईना है।
वो कैसे?
देखिए, सात दिन केवल एक सप्ताह का समय नहीं है, ये पूरे मानव जीवन का चक्र है। हर इंसान का जन्म सोमवार से रविवार के बीच होता है और मृत्यु भी इन्हीं सात दिनों में से किसी एक दिन होती है।
अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तो एक तरह से देखा जाए तो हर मनुष्य के पास केवल सात दिन ही हैं। परीक्षित को उसकी समय सीमा बता दी गई थी, लेकिन हम सब भी उसी सीमित समय के साथ जी रहे हैं।
यहाँ बात सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि श्राप का पता चलने पर परीक्षित का जो रवैया था ना, वो हैरान करने वाला था। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, उन्होंने कोई रक्षा कवच नहीं ढूंढा।
बिल्कुल नहीं।
वे राजपाट त्याग कर गंगा तट पर बैठ गए। उन्होंने मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य की तरह स्वीकार कर लिया। उनके भीतर एक गहरा वैराग्य आ गया।
और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है।
हाँ, और जब गंगा तट पर परम ज्ञानी शुकदेव जी का आगमन होता है, तो राजा परीक्षित उनसे जो प्रश्न पूछते हैं, वो पूरी चर्चा का केंद्र बन जाता है। वे पूछते हैं, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए?
और ये प्रश्न भागवत का हृदय है। जब मौत सामने खड़ी हो ना, तब सारा स्वर्ण, सारा राजपाट, सारा अहंकार अर्थहीन हो जाता है।
सब कुछ शून्य हो जाता है।
बिल्कुल। शुकदेव जी से पूछा गया ये प्रश्न केवल एक भयभीत राजा का प्रश्न नहीं है, यह एक जिज्ञासु आत्मा का प्रश्न है, जो ये जानना चाहती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। शुकदेव जी इस प्रश्न के उत्तर में जो ज्ञान देते हैं, वो हमें यह समझाता है कि शांति बाहर भागने में नहीं, बल्कि भीतर झांकने में है।
लेकिन देखिए, यहाँ एक समस्या है। शांति के मार्ग पर चलने की बात कहना बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना उतना ही मुश्किल। इंसान को पता होता है कि मृत्यु अटल है, फिर भी वो भटकता है।
हाँ, इंसान का मन बहुत चंचल होता है।
तो इंसान अटकता कहाँ है? वो कौन सी चीज है जो उसे आंतरिक शांति तक नहीं पहुंचने देती? भागवत के पन्नों में इसका उत्तर मनुष्य के अहंकार और माया के प्रसंगों में मिलता है, जैसे सती और दक्ष का प्रसंग।
बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप।
ये प्रसंग सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि अहंकार कैसे बुद्धि को अंधा कर देता है, इसकी एक गहरी केस स्टडी है।
दक्ष प्रजापति का उदाहरण बहुत ही सटीक है। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे परम ज्ञानी थे, प्रजापति थे, उनके पास अपार ज्ञान और सत्ता थी।
हाँ,
लेकिन उनका अहंकार इतना विशाल था कि उन्हें लगता था कि पूरा ब्रह्मांड उनके ही नियमों से चलना चाहिए। भगवान शिव, जो कि वैराग्य और भौतिक बंधनों से मुक्ति के प्रतीक हैं, वे दक्ष के इस कृत्रिम पदानुक्रम और अहंकार को नहीं मानते थे।
तो स्वाभाविक है कि टकराव होना ही था।
बिल्कुल। जब शिव ने एक सभा में दक्ष के सम्मान में उठकर अभिवादन नहीं किया, तो दक्ष का अहंकार बहुत बुरी तरह आहत हो गया।
और यही आहत अहंकार विनाश का कारण बना। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया।
सती फिर भी उस यज्ञ में गईं, क्योंकि वे अपने पिता से जुड़ी हुई थीं।
हाँ, एक बेटी का मोह था।
लेकिन जब उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता के अहंकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और भगवान शिव का खुलेआम अपमान हो रहा है, तो वे उस मानसिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकी।
और फिर उन्होंने वो कठोर कदम उठाया।
हाँ, उन्होंने योगाग्नि में, यानी योग की उस चरम आंतरिक ऊर्जा और अग्नि में, अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव के क्रोध ने दक्ष के पूरे यज्ञ और उसके अहंकार को भस्म कर दिया।
बाप रे!
ये प्रसंग साफ दिखाता है कि जब इंसान का बौद्धिक ज्ञान अहंकार में बदल जाता है तो वो सबसे पहले उस इंसान की ही शांति और उसके अस्तित्व को नष्ट करता है।
मतलब ज्ञान अगर बिना समर्पण के हो तो वो सिर्फ एक हथियार बन जाता है जो खुद को ही काटता है।
बहुत खूब कहा।
इसी अहंकार के साथ एक और चीज जुड़ी है, देहाभिमान या माया। पुरंजन और जड़भरत की कथाओं में इसे बहुत ही सुंदर रूपकों के माध्यम से समझाया गया है।
पुरंजन की कथा तो पूरी तरह से प्रतीकात्मक है।
पुरंजन का अर्थ है वो जो नगर यानी शरीर में रहता है।
अच्छा, नगर मतलब शरीर। हाँ, ये कथा दर्शाती है कि कैसे मनुष्य नौ द्वारों वाले एक नगर में रहता है जो हमारे शरीर के नौ द्वार हैं, और धीरे धीरे उस नगर की सुख सुविधाओं, उसकी रानी और उसकी संपत्ति में इतना खो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो उस नगर का राजा है, वो नगर नहीं है।
मतलब वो शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठता है।
बिल्कुल, और उसी मोह में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में उलझ जाता है।
इस बात पर हमेशा मेरे मन में एक सवाल उठता है, मतलब अगर ये शरीर नश्वर है, अगर ये दुनिया स्थायी नहीं है, तो हम इससे इतने गहरे से जुड़े हुए क्यों हैं?
ये माया का प्रभाव है।
इसे समझने के लिए मैं अक्सर एक एनालॉजी के बारे में सोचती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी शहर में जाता है और वहाँ एक किराए का मकान लेता है।
अच्छा।
वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये घर उसका नहीं है, कुछ महीनों या सालों बाद उसे ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वो उस घर से इतना जुड़ जाता है कि वो उसे हमेशा के लिए अपना मान लेता है।
बिल्कुल सही कह रही हैं।
वो उसके रंग रोगन के लिए, उसकी दीवारों पर लगे एक छोटे से दाग के लिए पड़ोसियों से लड़ने लगता है। वो रातों की नींद खराब कर लेता है उस घर के लिए, ये भूल कर कि वो केवल एक यात्री है और उसे यहाँ से जाना है।
बहुत गहरी बात है।
हम अपने शरीर रूपी इस किराए के मकान के साथ भी तो बिल्कुल यही कर रहे हैं ना। हम इस शरीर और इसके रिश्तों के लिए लड़ते हैं, रोते हैं और अपनी सारी शांति खो देते हैं।
ये किराए के मकान का उदाहरण बहुत ही गहरा है, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो कपिल देहूति प्रसंग, जहाँ भगवान कपिल अपनी माता देहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं, वो इसी दुविधा का सीधा समाधान है।
सांख्य दर्शन?
हाँ, सांख्य दर्शन कोई साधारण विचार नहीं है। ये चेतना जिसे पुरुष कहा गया है और प्रकृति जिसे माया या शरीर कहा गया है, कि बीच के अंतर को वैज्ञानिक रूप से अलग करने की प्रक्रिया है।
तो सांख्य दर्शन असल में काम कैसे करता है? मतलब ये इंसान को इस किराए के मकान से मोह छोड़ने में कैसे मदद करता है?
देखिए, सांख्य दर्शन सिखाता है कि मनुष्य जो भी दुख या सुख महसूस कर रहा है वो शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। आत्मा तो केवल एक ऑब्जर्वर है, एक दृष्टा है।
अच्छा, सिर्फ देखने वाली?
हाँ, जब तक मनुष्य खुद को मन या शरीर मानता है तब तक उसे दर्द होता है, लेकिन जिस क्षण वो ये समझ लेता है कि वो तो केवल देखने वाला है और ये शरीर केवल एक प्रकृति का हिस्सा है जो अपने चक्र में चल रहा है, तो उसका मोह टूट जाता है।
समझ गए।
भगवान कपिल यही समझाते हैं कि दुख का कारण शरीर का होना नहीं है, दुख का कारण ये मान लेना है कि मैं ही शरीर हूँ। जब दृष्टा खुद को दृश्य से अलग कर लेता है तो शांति अपने आप भीतर उतर आती है।
तो हमने समस्या को पूरी तरह से समझ लिया है। कलयुग का मानसिक प्रदूषण जो सत्ता और विशेषाधिकार से आता है, मृत्यु का अटल सत्य जो हर इंसान का इंतजार कर रहा है,
बिल्कुल,
दक्ष का वो अहंकार जो ज्ञान को भी विनाशकारी बना देता है, और पुरंजन का वो मोह जो हमें किराए के मकान को अपना मानने पर मजबूर कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल इन सब बाधाओं को पार करके अंतिम मोक्ष और शांति तक पहुंचने का व्यवहारिक मार्ग क्या है?
ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है।
हाँ, इस यात्रा का समाधान क्या है?
इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से भक्ति और समर्पण में मिलता है। ज्ञान और वैराग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची शांति बिना समर्पण के नहीं मिलती।
समर्पण,
और समर्पण का सबसे शुद्ध रूप हमें ध्रुव महाराज की कथा में देखने को मिलता है।
ध्रुव की कथा
बाल भक्ति की उस असीमित शक्ति को दर्शाती है जहाँ मन में कोई छल कपट या दुनियावी उलझन नहीं होती।
हाँ, वो तो छोटे से बालक थे।
एक छोटा बालक जिसे उसकी सौतेली माता ने अपमानित किया और पिता की गोद में बैठने से रोक दिया, वो अपमान से आहत होकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा।
उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसे भगवान विष्णु को प्राप्त करना था। और जब ध्रुव को देवर्षि नारद का मार्गदर्शन मिलता है ना, तो वे उसे कोई बहुत जटिल अनुष्ठान, कठोर योग या लंबे यज्ञ करने को नहीं कहते। वे उस छोटे से बालक को केवल एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बस एक मंत्र।
ध्रुव के पास कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो अक्सर बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं होती, और वो है दृढ़ संकल्प और पूर्ण एकाग्रता।
सही बात है।
उसने उस मंत्र को इतनी गहरी श्रद्धा के साथ जपा कि पूरी प्रकृति को झुकना पड़ा और भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। उसे ध्रुव तारा बनने का वरदान मिला जो ब्रह्मांड में सबसे स्थिर है।
बिल्कुल।
यह घटना दिखाती है कि शांति और ईश्वर को पाने के लिए उम्र या जटिल ज्ञान की नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और एक दिशा में पूरी तरह से समर्पित होने की जरूरत है।
मैं सहमत हूँ, ध्रुव की कहानी जहाँ संकल्प की शुद्धता की बात करती है, वहीं अजामिल की कथा इस भक्ति मार्ग का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही शक्तिशाली दृष्टिकोण सामने लाती है।
अजामिल की कथा?
हाँ, अजामिल की कहानी मानव मनोविज्ञान का एक गहरा अध्ययन है। अजामिल शुरू में एक बहुत ही सदाचारी, नियम पालन करने वाला और धार्मिक ब्राह्मण था।
अच्छा।
लेकिन एक दिन बुरी संगति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका पूरा जीवन बदल गया। वो अपने सारे धर्मकर्म भूल गया और उसने अपना पूरा जीवन पाप, छल और बुराइयों में बिता दिया।
लेकिन उसके जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था।
हाँ, नारायण।
जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने यम दूतों को अपने सामने खड़े देखा। वो भयानक रूप से डरा हुआ था। उस घोर व्याकुलता और पीड़ा के क्षण में उसने अपने पास खेलते हुए अपने बेटे को जोर से पुकारा, नारायण।
बिल्कुल।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने भगवान को नहीं पुकारा था, उसने अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन जैसे ही उस नाम का उच्चारण हुआ, विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा लिया।
और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा।
जी बताइए।
मतलब जब कोई इस कथा को पहली बार सुनता है ना, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है, क्या ये कोई चीट कोड है?
चीट कोड?
हाँ, मतलब क्या कोई इंसान जीवन भर गलत काम कर सकता है, दूसरों को पीड़ा दे सकता है, सारे नियम तोड़ सकता है और अंतिम क्षण में बस एक नाम लेकर मोक्ष पा सकता है? क्या ये भावगत का संदेश है कि कर्मों का कोई महत्व ही नहीं है? ये तो थोड़ा अतार्किक लगता है मुझे।
ये बहुत ही स्वाभाविक संदेह है और मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों रखता है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इस प्रसंग को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। भागवत कथा अजामिल के प्रसंग से पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रही है।
तो फिर इसका असली अर्थ क्या है?
इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। देखिए, मृत्यु के समय जब इंसान अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी चेतना का स्तर सबसे सच्चा होता है। अजामिल का अंत समय में अपने बेटे को पुकारना कोई साधारण पुकार नहीं थी।
अच्छा।
वो एक इंसान की चरम व्याकुलता थी, जब दुनिया के सारे सहारे टूट चुके थे। उस असहाय अवस्था में जब उसके मुंह से नारायण शब्द निकला तो वह शब्द केवल एक ध्वनि नहीं था, वह उसकी चेतना का अंतिम सत्य बन गया।
मतलब वो पूरी तरह से टूट चुका था।
हाँ, अजामिल की कथा ये नहीं सिखाती कि शॉर्टकट कैसे लें, यह सिखाती है कि ईश्वर का नाम या वह सर्वोच्च चेतना इतनी शक्तिशाली है कि वो इंसान के सबसे गहरे अंधकार को भी काट सकती है।
वाह।
सच्चे मन से या उस चरम पीड़ा में अनजाने में भी लिया गया नाम इंसान की चेतना को पूरी तरह से बदल देता है। जब अजामिल को दूसरा जीवन मिला तो उसने वापस पाप की दुनिया में कदम नहीं रखा, बल्कि उसने सच्चा वैराग्य अपना लिया।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इसका असली संदेश ये है कि सुधरने या शांति के मार्ग पर लौटने में कभी देर नहीं होती। कोई इंसान कितना भी भटक चुका हो, एक सच्ची पुकार उसे वापस ला सकती है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक बहुत ही सशक्त यात्रा रही है। हमने कलयुग के उस मानसिक प्रदूषण से शुरुआत की जहां सोने का मुकुट राजा परीक्षित के मन में सत्ता का अंधापन ले आया।
बिल्कुल।
हमने देखा कि कैसे 7 दिन के श्राप के रूप में मृत्यु के अटल सत्य ने परीक्षित के भीतर उस वैराग्य को जगाया जहां से असली आत्ममंथन शुरू हुआ।
सही बात है।
हमने दक्ष के प्रसंग से ये समझा कि कैसे अहंकार बौद्धिक क्षमता को भी विनाशकारी बना देता है। पुररंजन और कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से हमने जाना कि कैसे हम इस किराए के मकान को अपना मानकर व्यर्थ के दुखों में उलझे हैं। और अंततः ध्रुव के दृढ़ संकल्प और अजामिल की अंतिम पुकार के जरिए हमने शांति और मोक्ष का व्यवहारिक मार्ग देखा।
इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भागवत का ये दूसरा दिन सिर्फ प्राचीन राजाओं या ऋषियों की बात नहीं कर रहा है, ये सीधे तौर पर हमारी बात कर रहा है।
हाँ, हमारी अपनी जिंदगी की।
राजा परीक्षित का वो 7 दिन का श्राप हम सब का सच है। हमारे पास भी जीवन के ये 7 दिन ही हैं, एक बहुत ही सीमित समय। मुख्य प्रश्न ये है कि हम इस समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं।
बिल्कुल।
क्या हम इसे दक्ष प्रजापति की तरह अपनी झूठी शान और अहंकार को बचाने में गंवा रहे हैं, पुरंजन की तरह किराए के मकान की दीवारों से मोह कर रहे हैं, या फिर परीक्षित की तरह अपनी नश्वरता को स्वीकार कर आत्म शांति की खोज में बैठे हैं?
ये सच में एक ऐसा सवाल है जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे अजामिल ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में नारायण को पुकारा। वो उसकी सबसे व्याकुल, सबसे गहरी पुकार थी जिसने उसे मुक्त कर दिया।
जी हाँ।
लेकिन जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। आज की इस तेज भागदौड़ और शोर से भरी जिंदगी में हम दिन रात किन चीजों को पुकार रहे हैं?
बहुत ही गहरा सवाल है।
महत्वपूर्ण। जब रात को हम सोने जाते हैं, जो कि हर दिन के अंत में मृत्यु का ही एक छोटा सा अभ्यास है, तो ठीक सोने से पहले हमारा मन अंत में किसे पुकारता है? क्या हम अपनी चिंताओं को पुकार रहे हैं? क्या हम अपने तनाव, अपने बैंक बैलेंस या किसी से अपनी दुश्मनी को पुकार रहे हैं? क्योंकि जिन विचारों को हम बार बार पुकारते हैं, वे ही हमारे जीवन में दूत बनकर आते हैं।
बिल्कुल सही बात है।
अगर हम लगातार अपनी चिंताओं और डरों को आवाज देंगे, तो हम खुद ही अपनी बेचैनी के दूतों को निमंत्रण दे रहे हैं। सोचिए, क्या हमारा मन हर रात उस स्वर्ण मुकुट के मुंह में उलझा है, या वो उस अजामिल की तरह किसी ऐसी शांति को पुकार रहा है जो उसे मुक्त कर सके?
ये एक बहुत ही विचारणीय बात है।
क्या हमारे रोजमर्रा के शब्द हमारे लिए बंधन बन रहे हैं, या वे हमें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और एक नई वैचारिक यात्रा के साथ फिर मुलाकात होगी।